परिहन्तारणम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की मोक्ष मार्ग पर चलने वाला एक भव्यात्मा मोक्ष मार्ग का अच्छी तरह से ज्ञान रखता है। मार्ग का ज्ञान अच्छी तरह से यदि हम नहीं रखेंगे मार्ग पर चल ही नहीं पाएंगे। रास्ता ही पता नहीं है तो यात्रा नहीं हो सकती। रास्ता का ज्ञान आवश्यक होता है। रास्ता बहुत लंबा है, चलना है तो उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। ठीक इसी तरह से मोक्ष मार्ग में भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान अच्छी तरह से होना बहुत आवश्यक है। रास्ते चलने वाले एक पथिक को जैसे रास्ते का ज्ञान आवश्यक है वैसे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मोक्ष मार्ग के पथिक को मार्ग का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक। मार्ग का ज्ञान का तात्पर्य यह है चलते हुए क्या करना और क्या नहीं करना, इसका ज्ञान ये मार्ग का ज्ञान है। मार्ग पर चलते हुए क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका ही ज्ञान आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि इसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जमलिंग रहता है, तो वो जमलिंग दूर करने के लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी उसका अध्ययन परम आवश्यक होता है। अध्ययन परम आवश्यक होता है। अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ध्यान नहीं आएगा। ज्ञान आएगा तो ध्यान आएगा, ज्ञान हो तो ध्यान आएगा, ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान भी नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से पहले ज्ञान की आवश्यकता है। जिसको ज्ञान है वह रास्ता चलता चलता सबका ध्यान रखेगा, ध्यान में आएगा, चलेगा, निर्दोष चलेगा। लोगों को सामान्य बातें मालूम नहीं है कि आयतन कौन होता है और अनायतन कौन, यही मालूम नहीं, तो मार्ग का ज्ञान नहीं है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित मार्ग में कौन पूज्य और कौन अपूज्य यही मालूम नहीं है, और विदाउट मालूम चल रहा है तो चलना बेकार है। कोल्हापुर पहुंचना था और सातारा पहुंच गए, ऐसा हो सकता है। आयतन और अनायतन की चर्चा जहां तक, बहुत अच्छी तरह से हमको करना ही चाहिए। किसकी चर्चा? आयतन और अनायतन। शब्द कठिन जरूर है, कहीं भी व्यावहारिक क्षेत्र में इसका उपयोग हुआ ही नहीं। क्या हुआ है? कहीं आता है संसार में, लोक व्यवहार में, सुनने में आता है? कहीं भी सुनने में नहीं आता। ये आयतन शब्द शास्त्र में ही आता है। और आयतन का शाब्दिक अर्थ यदि बताया जाए, यतन, यत धातु से यतन शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा में यतन का अर्थ जतन करके, मैं जतन करता हूं यानी प्रयत्न करता हूं। यत धातु प्रयत्न के अर्थ में आया है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और यत धातु से ही यतन बना और उसके सामने आ उपसर्ग जुड़ा तो आयतन बना। यतन के सामने उपसर्ग आ जुड़ गया है, आयतन बन गया है। आयतन यानी पूरी तरह से प्रयत्न करना, अच्छी तरह से प्रयत्न करना, संपूर्ण प्रयत्न करके अपने आप को लगाना, ऐसा तात्पर्य। आसमंतात यतनम, आयतनम, पूर्णतः प्रयत्न करने का नाम आयतन है। क्या प्रयत्न करना? प्रश्न उठता है, अपने आत्मा को मार्ग पर लगाने का पूरी तरह से प्रयत्न करना। कहां पर लगाने के लिए? मोक्ष मार्ग पर अपनी आत्मा को लगाने के लिए प्रयत्न करना। आत्मा मोक्ष मार्ग पर लगने पर ही कल्याण कर सकता है। तो मार्ग पर लगना, मार्ग हमारे लिए आयतन है। आयतन का तात्पर्य प्रयत्न करना। तो किसके प्रति प्रयत्न करना? मोक्ष मार्ग के प्रति। मोक्ष मार्ग कहां उत्पन्न होता है? आत्मा में उत्पन्न होता है। और यहां आयतन शब्द प्रयत्न करने के अर्थ में आता है, तो अपने आत्मा को किस ओर लगाने का प्रयत्न करना? मोक्ष मार्ग पर। मिथ्या मार्ग है क्या सम्यक मार्ग है? सम्यक मार्ग, सम्यक मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करना। सम्यक मार्ग हमारे लिए आयतन है और मिथ्या मार्ग अनायतन है। मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्गी ये क्या है? अनायतन है। और सम्यक मार्ग और सम्यक मार्गी ये आयतन है। अपने आत्मा को कहाँ लगाना? सम्यक मार्ग पर लगाना, और सम्यक मार्ग पर जो चल रहे हैं उनके सहारा लेकर के चलना, उनका आश्रय लेकर के चलना। अपनी आत्मा को मार्ग पर तो लगाया, अपनी आत्मा को मार्ग पर तो लगाया, लेकिन मार्गी नहीं मिले। उस मार्ग पर चलने वाले लोग नहीं मिले, केवल अपनी आत्मा को लगाया। तो मार्ग पर लगाया का मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसी मार्ग पर लगाया, किंतु मार्गी नहीं मिले, यानी सत्संग नहीं मिला। मार्गी जो होता है वो सत्संग का प्रतीक है। हम संग करना चाहते थे, अच्छा संग, सत्संग नहीं मिले। लिखने की अपेक्षा सुने तो बहुत अच्छा है। लिखने के लिए तो कैसेट बन रही है, खूब कॉपी में भर लेना उसको। बात गहरी है और हम खोलना चाहते हैं, उपयोग उधर रहेगा तो इधर, दोनों एक साथ काम नहीं होते। ये कैसेट लिखने के लिए बन रही है समझ लो, लिखने की चिंता मत करो। 10 रुपए दे दो, कैसेट मिलेगी, खूब लिखते रहो साल भर जब समय मिले। महाराज के विहार के बाद वही काम करना। दूसरा काम क्या है? मार्ग के ऊपर अपने को लगाना। मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। मार्ग भी आयतन है और कुमार्ग अनायतन है। सुमार्ग आयतन है और कुमार्ग अनायतन है। सुमार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है, और कुमार्ग में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होता है। सुमार्ग में संयम होता है, कुमार्ग में असंयम होता है। सुमार्ग में वीतरागता होती है, कुमार्ग में राग ही राग होता है। तो रागी जीव कुमार्ग पर चलता है, वीतरागी जीव सुमार्ग पर चलता है। वीतरागता आयतन है और राग अनायतन है। कषाय क्या है? अनायतन है। और कषाय मुक्त दशा आयतन है। अपरिग्रह आयतन है, परिग्रह अनायतन है। परिग्रह रहित जीव आयतन है, परिग्रह सहित जीव अनायतन है। दूध का दूध, पानी का पानी, इस चीज को यदि समझेंगे ना तो ही हम मार्ग पर चल पाएंगे। यही मार्ग का ज्ञान है, यही मार्ग का ज्ञान है। मार्ग का ज्ञान नहीं होगा तो जमलिंग रहेगा कि कि परिग्रहवान पूजनी है क्या नहीं,
जमलिंग रहेगा।
और फिर ये भी बात दिमाग में आएगा, एक महाराज ऐसे कहते हैं, एक महाराज ऐसे, उनका ठीक है कि इनका ठीक है? नहीं, ज्ञान पक्का नहीं है, ज्ञान पक्का नहीं है, इसलिए जमलिंग होता है। ज्ञान मजबूत हो तो एक जगह ध्यान लगेगा, नहीं तो ध्यान बटेगा जमलिंग से, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर, आत्मा इसमें भटकती भटकती चली गई तो फिर कल्याण कैसे होगा? भटकन में ही सारा जीवन चला गया, जमलिंग में ही सारा जीवन चला गया। तो ये आयतन अनायतन की बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये बात बहुत महत्ता रखती है मोक्ष मार्ग में, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसका। संगति कहलाती है ये संगति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने आत्मा में जगाना है, और वो दर्शन ज्ञान चारित्र ही आयतन है, उस पर चलना है, वही मार्ग है, वही सुमार्ग है, उस पर चलना है। उस पर चल ही नहीं पाए और जमलिंग में रह गया हमारा जीवन, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। अनादिकाल से ऐसे ही थे, ये भी एक जिंदगी जमलिंग में गई, कुछ कर नहीं पाए, अज्ञानी रहा, निर्णय कुछ हुआ नहीं, ये क्या वो क्या ठीक, ये क्या ठीक, वो क्या ठीक, ये क्या ठीक, ऐसे ही गया तो कल्याण तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे भाव चले गए हैं, कब होगा? निर्णय करने पर ही होगा। ज्ञान लेकर निर्णय करो कि सत्य क्या है, जिस किस पर अपनी आत्मा को लगाना है, आयतन क्या है, अनायतन क्या है, इसको निर्णय करने के बाद ही आत्मा को उस पर लगा सकते। निर्णय के बिना कैसे लगाएंगे? जब तक निर्णय नहीं होता तभी तक जमलिंग रहता है। अभी चुक गए तो चुक गए, तो चुक गए ना, चुड़िया चुक गई खेत, तब पछतावत क्या होत। चुड़िया, चुड़िया नहीं चिड़िया, चिड़िया चिड़िया जो है खेत को सब चुक करके चले गए, वो धान सब खा गए, और बाद में पछताने से क्या होगा? जब तक खेत है, खेत में फसल है, सावधान रहना, उसकी सुरक्षा करना आवश्यक होता है किसान को, तो निरंतर फसल की रक्षा कर रहा है, रक्षा की चिंता में पड़ा है, तब तो ठीक है, जीवन सार्थक है, साल भर खाएगा आराम से। चिड़िया सब आकर के खा के चले गए, फिर बाद में जाग गए, बाद में जागने से कुछ नहीं होगा, मरण काल में तो जाग नहीं सकते। जिंदगी में फसल थी, रक्षा करना चाहिए था, और फसल सब खा गया, एक एक क्षण चले गए, कौन ने खा लिया? ये संशयवाद ने खा लिया, जमलिंग ने खा लिया। हमारा जीवन विदाउट ज्ञान, विदाउट मार्ग पर लगे, समाप्त हो गया। फिर लास्ट में पछताने से कुछ तो कर नहीं पाया, कुछ आनंद ही नहीं आया, मैं यही इसी में रह गया कि उस महाराज का ठीक है, इस महाराज का ठीक है, वो शास्त्र ठीक है, ये शास्त्र ठीक है, वो देवता ठीक है, ये देवता ठीक, निर्णय नहीं कर पाया, जमलिंग में चला गया। आनंद आया? लास्ट टाइम तक आनंद नहीं आया, और चले गए, जाते समय पछताते हुए चले गए। ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। जब जागो तब सवेरा। भावांतर में फिर सत्संग मिले, फिर लगातार सुने, ऐसे ही शिविर में अटेंडी करे, सात बजे उठे, मेहनत करे, वहां पर भी यही करना पड़ेगा। कहीं भी जाओ, आप विदेह क्षेत्र में भी जाओ और चतुर्थ काल में भी जन्म ले लो, आपको तो करना यही पड़ेगा। भगवान के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा, समोशरण जाना ही पड़ेगा, प्रवचन सुनना ही पड़ेगा। प्रवचन सुने बिना आयतन अनायतन का ज्ञान नहीं होगा, और रोज जब तक नहीं होगा मार्ग पर लगना संभव नहीं। सब समझना पड़ेगा और समझने के लिए समय देना पड़ेगा। एक दिन की बात नहीं, पांच मिनट की बात नहीं है ये। महाराज, हमारी एक शंका है, लोग पूछते हैं, टाइम तो नहीं है, पांच मिनट है, लेकिन जल्दी से आपको जरा बताना है। क्या बताना है? ये जैन धर्म क्या कहलाता है? आओ उनको पांच मिनट में जैन धर्म को कैसे समझाए। ये धर्म, धर्म बहुत सारे धर्म हैं, उसमें जैन धर्म क्या चीज है पूछते हैं, सामान्य लोग यही पूछते हैं। और इन धर्मों में क्या फर्क है? पांच मिनट की बात है क्या? एक महीना शिविर में बैठना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के तुम्हें मार्ग कुमार का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से होगा। एक महीने का शिविर चाहिए कम से कम, मैं बता रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा एक चातुर्मास। और लगातार कंटिन्यू सुनना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाकर के आप मजबूत होंगे, आपका ज्ञान बिल्कुल फिल्टर ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान ही तो गड़बड़ है, इसके पास अज्ञान है, अज्ञान ही अनायतन है, उसी को पहले त्यागना है। और अज्ञान को बाहर निकालने के लिए कम से कम चार महीने चाहिए। पूरी तरह से अज्ञान बाहर निकल गया तो आपका आत्मा स्वयं आयतन के रूप में कन्वर्ट हो गया। जब तक अज्ञान था तब तक अनायतन था, जब तक अज्ञान रहा तब तक आपकी आत्मा अनायतन कहलाती थी, और जब ज्ञान आ गया तो उसी आत्मा को हम आयतन बोलने लगे। सम्यक दर्शन कब प्राप्त होता है? ज्ञान होने पर ही होगा ना। ज्ञान आया, आयतन आया। अज्ञान है तो अनायतन भी है। और राग द्वेष कौन करता है? अज्ञानी। अज्ञान अनायतन है, अज्ञानी राग द्वेष करता है। राग द्वेष करते करते जिंदगी बर्बाद करता है। इसी का नाम संसार मार्ग है। अनायतन मार्ग संसार मार्ग, आयतन मार्ग मोक्ष मार्ग। आयतन बाहर भी होते हैं और आयतन अंदर भी होते हैं। अंदर के अनायतन, अनायतन क्या क्या, आयतन क्या क्या, ये पूछना चाहो तो देखो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों अनायतन। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या अनायतन है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आयतन है। अब इसमें कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, इसकी तुलना करने के लिए ज्ञान तो चाहिए, और आयतन का भी निर्णय करना है और अनायतन का भी निर्णय करना है। इसका भी नॉलेज चाहिए, इसका भी नॉलेज चाहिए। इसमें दोष क्या, इसमें गुण क्या, और हमारा हित दोष में है या गुण में है, दोनों के तुलनात्मक ढंग से आपको अध्ययन करना पड़ेगा चार महीने। तब कहीं जाकर के आपकी आत्मा आयतन के रूप में कन्वर्ट होगी और वो स्वयं आयतन कहलाएगी, मार्ग पर दिखाई देगी। तब तक कुमार्ग पर रहेगी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तीनों जहां हैं
वहां राग द्वेष रहता है, कषाय रहता है, पाप रहते हैं, अज्ञान रहता है, जमलिंग रहता है, सब रहते हैं। जो जो दोष आप याद कर लो वो सारे दोष वहां वहां रहते हैं। अनायतन के पास सारे दोष रहते हैं। भगवान ने ऐसा कहा कि संगति बाहर में जो जिसकी संगति कर रहे हो वो भी आयतन हो ये आवश्यक है आपके लिए। वो मार्ग पर चलने वाले हो, उनकी आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित हो, ये आवश्यक है। ऐसे की संगति में जाओ जो खुद आयतन बनकर मार्ग पर चल रहे हैं, उनके पास जाओ। जो खुद आयतन बिना बने बिना अनायतन रह करके ही जिस पर चल रहे हैं उनकी संगति ज्यादा मत करो, क्योंकि दोष ही दोष हैं। दोषवानों के बीच में बैठोगे दोषी बनोगे, संस्कार आएगा। जैसी गति जैसी संगति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। दोषवानों के बीच में रहने से दोषवान बनते जाओगे, गुणवानों के बीच में बनने रहने से गुणवान बनते जाओगे। तो गुणवान कौन? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर जो चल रहा है वो गुणवान, और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र पर जो चल रहा है वो ये। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा बाहर में भी आयतन की संगति में रहो और अंतरंग में भी आयतन बनाए रखो। अंतरंग के आयतन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इनको तो आत्मा में सुरक्षित रखो। रखने के साथ साथ किसके पास जाओ? अब सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र, इनके पास ही सम्यक दर्शन होता है। उनके पास उनकी संगति में रहो, निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा, ऐसा कहा। हुंडाव सर्पनी काल के दोष के कारण अनायतन बाहर में भी अनायतन दिखाई देंगे और अंतरंग में भी बहुसंख्यक जीवों में अनायतन ही अनायतन के लक्षण दिखाई देंगे। उनसे बचना, और हुंडाव सर्पनी काल में अनायतन से अगर बच गए, ये दुनिया में सबसे प्रथम नंबर का चमत्कार है। बाहुबली भगवान चमत्कार की कोटि में आए कितने नंबर के? अब तो प्रथम नंबर के चमत्कार में उनको शामिल कर दिया गया, सातवें नंबर में रखा था बाहुबली भगवान को। दुनिया का आश्चर्य चमत्कार है ना, आश्चर्य वंडरफुल, पहले नंबर में कर दिया, बताते घोषित हो गया बाहुबली भगवान। इतनी कलाकार प्रतिमा, कलायुक्त प्रतिमा कहीं भी नहीं है, पहले नंबर में रखा। इट्स हुंडाव सर्पनी काल में अपनी आत्मा को कोई अनायतन बना, अनायतन से आयतन के रूप में बना लेता है, बनाने में सफलता प्राप्त करता है, तो दुनिया का यह सबसे पहला वंडरफुल है। प्रथम आश्चर्य है। अब प्रथम आश्चर्य की कोटि में गिने जाओगे और गिनीज बुक में भी आओगे। गिनीज बुक में भी तुम्हारा नाम अंकित होगा। सम्यक दर्शन अगर धारण कर लिया, गिनीज बुक में अंकित करने योग्य हो गया वो। क्यों? हुंडाव सर्पनी काल चारों ओर अनायतन का साम्राज्य छाया हुआ है और उसमें एक व्यक्ति ने अपने आत्मा को जाना और अपने आत्मा को रास्ते पर लगा दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रास्ते पर। कितना बड़ा आश्चर्य है। एक व्यक्ति सागर के बीच में गिरा, और तैर करके तट पर आया। ये आश्चर्य नहीं, तैर करके अपने बाहुओं से तैर करके, कितना तैरना, मीलों मील तैरते हुए जाना। और कैसे तैरा, जहां पर वो गिरा उसके भाग्य से उसको एक लकड़ी मिल गई, सूखी लकड़ी तैरती हुई, बस सहारा मिल गया। उस एक छोटी लकड़ी के कारण से वो पूरा मीलों तक तैर करके छोर पर पहुंच गया। कैसे गिर गया था, विमान से गिर गया था, एक्सीडेंट में कूद गया और समुद्र में आ गया, वो कुछ नहीं था, ऐसे ही गिर गया, लेकिन लकड़ी मिली और बाकी लोगों को नहीं मिली, वो सब डूब गए और इसको एक लकड़ी मिली, उसके सहारे से मीलों तैर करके आ गया। ये जैसे आश्चर्य माना जाता है, वैसे ही पंचम काल में और उसमें भी हुंडासर्पिणी काल में ये तो लास्ट स्टेज पर आकर के खड़ा है जमाना। चारों ओर अनायतन ही अनायतन है, यहां पर धर्म करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, सभी अधर्मात्मा, किसी को ज्ञान नहीं, सभी अज्ञानी, और उनके बीच किसी को ज्ञानी मिल गए और मार्गदर्शन मिल गया। तो ज्ञानी जीव अगर हम लोगों को मिल गया तो आयतन कहलाया, और आयतन के उस लकड़ी के सहारे से तुम सागर को तैर जाओगे, अब संसार सागर को तैर करके उस पार जाओगे। बात ऐसी है, लेकिन पुण्य चाहिए, पुण्यवान ना हो तो पास में भी लकड़ी पड़ी हो तो ध्यान में नहीं आता, वो घबराता है, क्या हाय 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 क्या करूं क्या करूं, गिर गया डूब के मर गया, अरे वही लकड़ी थी, जरा सा पकड़ लेते तो बच जाते। घबरा के मर गए वो, लकड़ी से घबरा रहे हैं, अरे वो क्या है, भूत। बहुत मूर्खता है, लोग कहते हैं अरे क्या है वो पंथ, अरे क्या है ये पंथ, पंथों से घबरा करके घर में बैठे हैं। और कुछ ऐसे अनायतन आप लोगों के सामने मिलेंगे, वो फलाने पंथ का ग्रंथ, ये फलाने पंथ के साधु, ये फलाने पंथ के शास्त्र, ये फलाने पंथ के देव, पंथ का भूत सवार कराने वाले और अधिक हैं यहाँ दुनिया में, और आप उनकी बातों में आ जाते हैं और घर में बैठ जाते हैं। हाँ तो ऐसा है, तो हमको सुनना ही नहीं। अरे सुनने मात्र से कोई पंथवादी बनता है, सुनने से तो और सजग होता है व्यक्ति। गलत क्या है सही क्या है इसका ज्ञान होता है। हर किसी की बात को सुनो, सुनने की कोई, सुनना कोई मना नहीं और सुनना कोई गलत भी नहीं, लेकिन सत्य का निर्णय तभी होगा जब तक सुनेंगे नहीं। असत्य को भी सुनेंगे तो असत्य है ये पता चलेगा, सत्य को सुनेंगे तो सत्य ये है ये पता चलेगा। सुनना तो दोनों को चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए, सत्य को करना चाहिए। लोगों को विवेक नहीं है, विवेक नहीं है, और विवेकहीन जीव अधिक से अधिक हैं इस दुनिया में, विवेकहीन जीव बहुत हैं। वो सोच ही नहीं पाते, पहले बुद्धि को कुंठित ही रखते हैं, कल्याण कैसे होगा, वो आयतन बनने की क्षमता अपने पास रखते नहीं। आयतन बनने की क्षमता कुछ ही जीवों में होती है, और उतने लोग अगर पकड़ लेते हैं तत्व को, वो फिर छोड़ते नहीं।
का नाम गिनीज बुक में आता है। जैन धर्म बुद्धि का आयाम का मार्ग है, क्रियाकांडी धर्म नहीं है। ये आध्यात्मिक धर्म है, ये तात्विक धर्म है, आत्म साधना का धर्म है, भीतरी यात्रा है। और भीतरी यात्रा के लिए ये चाहिए, दिमाग चाहिए। एक खेती करता है, एक व्यापार करता है, खेती करने वाले के पास बुद्धि न हो तो चल जाएगा। कोई ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं, वहां क्या फावड़ा लेकर के दिन भर पसीना बहाते रहो। बुद्धिवान खेती करेगा तो डबल डबल हो जाएगा वो, डबल निकालते हैं। हाँ, 108 टन एकड़ में 108 टन गन्ना निकालते हैं बुद्धिमान लोग, और जिनको बुद्धि नहीं है 40 टन पड़ते हैं उनको। खेत वही, मिट्टी वही, सिर्फ व्यक्ति अलग अलग है। बुद्धिमान व्यक्ति उसी खेत में काम करेगा तो 108 टन निकालेगा, और बुद्धिहीन व्यक्ति उसी खेत में काम कर रहा है तो 40 टन। और वो दुखी होता है, उनका 108 क्यों मेरा ये 40 क्यों, दुखी होता है वो देख देख करके। तो बुद्धि की कमी है। प्रमाद ज्यादा, प्रमाद करते हैं, इसलिए कौन सुनेगा, कौन करेगा, कौन धर्म करेगा, क्या है क्या प्रमादी व्यक्ति कभी भी गिनीज बुक में नहीं आ सकता। जो इस मार्ग पर लग जाए, हुंडा सिरपनी काल में, पंचम काल में, अगर वो मार्ग पर है तो गिनीज बुक में ऐड है, वो उसका नाम ऐड हो चुका है। इसलिए आयतन अनायतन का स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने जैसा समझाया है उसको समझकर, उनकी वाणी से इसको निर्णय करके अपने को चलना है। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने ये कहा सत्संग में रहो। सत्संग क्या है, आपको दुस्संग से बचाता है। सत्संग के सानिध्य से आप दुस्संग से बच जाते हैं। और सत्संग में क्या पाते हैं, ज्ञान पाते हैं, बुद्धि विकसित होती जाती है। कुसंग में बुद्धि विकसित होगी क्या, बुद्धि विकसित वहां नहीं होगी, बुद्धि भ्रमित होगी वहां। और सत्संग में बुद्धि विकसित होगी, परीक्षा बुद्धि बढ़ेगी, आप एक जज की तरह, कोर्ट में जज होता है ना, एक जज की तरह बनेंगे, जजमेंट लेकर के चलेंगे। ये ज्ञान, जज बनने का ज्ञान कहाँ आएगा, जिनेन्द्र भगवान की जिनवाणी के अध्ययन से ये आएगा। उनका ज्ञान एकदम फिल्टर है, उसमें संशय करने की जरूरत ही नहीं। दुनिया पर खूब संशय करो, ये ठीक नहीं कहते, कहते क्या नहीं क्या मालूम, दुनिया पर संशय करो, पर जिनवाणी पर कभी भी संशय नहीं करो। आजकल होता क्या है, बाजार के बात तो बाजार के देवता, बाजार के गुरु, बाजार के शास्त्र, वो तो दिमाग में भरे हुए हैं। और फिर यहाँ जिनवाणी एक आध दिन पढ़ते हैं, एक आध दिन सुनते हैं, तो महाराज भी नए लगते हैं और हमारे शास्त्र भी नए लग रहे हैं और हमारे भगवान भी कुछ और लग रहे हैं। और उसमें कहते हैं कि फिर वो इतने सारे करोड़ों लोग कर रहे हैं, ये सही कि ये सही, जमलिंग में आ गए। ऐसा हाँ, ये भगवान की महिमा ही मालूम नहीं है ना, वो क्या चीज है तीन लोक के नाथ, केवल ज्ञानी उसकी महिमा मालूम नहीं, केवल ज्ञान वो भी मालूम नहीं, अरहंत वो भी मालूम नहीं, सुना इतना ही शब्द ही सुना है, पर उनके गुणधर्म, उनके लक्षण, उनकी महिमा कुछ ज्ञान ही नहीं है। ऐसे रत्न को भूल करके कहां कांच के रत्न के पीछे पड़े, डुप्लीकेट, और वो आदत में आ गई है। क्यों आ गई है? बाजार में जो कुछ भी माहौल है वो अनायतन का है, परिग्रही का है, परिग्रही को बजते हैं, परिग्रही को सुख का कारण मानते हैं, ये बाजार का माहौल है। और उन्होंने जो जो कहा वो करते आए आप, इसको कुल देवता मानो, तुम ले जाकर के रखो, तुम्हारे बुजुर्गों ने लेकर के रख दिया घर में, अनायतन को कुल देवता मान लिया, और आप और आपके बुजुर्ग जो भी पीछे काल में हुए हैं वो दोनों ही कुसंगति में रहे, सत्संग मिला ही नहीं उनको। जिनवाणी का ज्ञान नहीं मिला, वो सत्संग था वो भी नहीं मिला, सुनाने वाले भी नहीं रहे। सुनाने वाले तो अभी इस जमाने में, इस शतमान में पैदा हो रहे हैं। ये सभी कृपा शांति सागर महाराज की है। उन्होंने मुनि परंपरा को शुरू किया, मुनियों ने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, हे उपाधि का ज्ञान बढ़ने लगा। और आप लोगों के भाग्य की ये बात है कि विज्ञान युग भी, एक तरफ से विज्ञान युग भी विकास में आ रहा है। पहले उपदेश सुनने के लिए बार बार सत्संग में जाना पड़ता था, एक ही बार सुनने को मिलता था ऐसा उपदेश, लेकिन आप आज के उपदेश को हजार बार नहीं, जीवन पर्यंत हर रोज सुन सकते हैं एक उपदेश को, ऐसा विज्ञान ने हमारे लिए सुविधा बना के दे दी। और ये कैसेट, ये सीडी शास्त्र के समान पूजनीय है, वो शास्त्र ही है, ये मत समझना ये कागज की जो छपे हुई है ये शास्त्र माना जाता है, सीडी भी शास्त्र है, यदि उसमें जिनवाणी भरी हुई है तो खाली सीडी नहीं, उसमें जो जिनवाणी है वो पूजनी है। हाँ, सच्चे गुरु के माध्यम से जो निकलती है जिनवाणी, वो जिनवाणी पूजनी है, वो तो केवल कुंड से गिर गई है। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। वीर भगवान के मुखारविंद से निकली और गुरु के कुंड में वह जिनवाणी रूपी अमृत गिर गई, और वहां से कुंड जब भर गया तो वो और नीचे गिरती 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 समुद्र तक पहुंच गई। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी। जिनवाणी पूजनी है, पुद्गल मटेरियल पूजनी नहीं, सीडी कागज पूजनी नहीं, वाणी पूजनी है, पुद्गल वस्तु पूजा नहीं जाता, वाणी पूजी जाती है, क्योंकि ये वाणी जिनेन्द्र भगवान के उस आत्मा से निश्रित होकर के आई, जिस आत्मा के भीतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आयतन विराजमान थे तीनों। दर्शन ज्ञान चारित्र का आयतन जहां पर था, उस आयतन का स्पर्श करके ये वाणी आई है ना, इसलिए जिनवाणी भी पूज्य है। वाणी शब्द ही तो है, पुद्गल है, शब्द पुद्गल है क्या, आत्मा है, पुद्गल है, तो पुद्गल की पूजा करते, दिव्य ध्वनि की हम पूजा करते, तो दिव्य ध्वनि की पूजा करते हैं कि और किसी की पूजा करते, ध्वनि तो पुद्गल है, हाँ? नहीं, उस वाणी की पूजा तो हो ही रही है, इसमें जो लिखा गया है विषय इसकी पूजा तो हो रही है, उस सीढ़ी में जो भरा है उस उपदेश की पूजा तो हो ही रही है, तो उपदेश एक शब्द ही तो है, आवाज ही तो है, वो आवाज पूजनी है क्या, आवाज भी पूजनी नहीं, सीढ़ी भी पूजनी नहीं, बल्कि उस आवाज में जो शब्द भरे हैं, शब्द में जो अर्थ है, अर्थ में जो अपना कल्याण निहित है, अपने कल्याणकारी उस अर्थ की पूजा हम करते हैं, वो अर्थ जो है वो जिनवाणी है, उस वाणी का जो मर्म है वो जिनवाणी है, अर्थ यानी गुण, वो जो हमारे लिए हित कर सकता है वो अर्थ हमारे लिए वंदनीय है, वो आयतन है, वो आवाज के माध्यम से वहां से पुद्गल पर आरूढ़ होकर के आई है जिनवाणी। देखो शब्द पुद्गल है क्या, नहीं, ओम कह दिया भगवान ने, ओम क्या चीज है, एक शब्द है सुनाई देने वाला, ये पुद्गल ही है, आवाज पुद्गल है, उस आवाज के घोड़े पर बैठ करके मां जिनवाणी आ गई, आवाज के घोड़े पर आरूढ़ होकर के आ गई, ये जिनवाणी कहां कहां किस किस वाहन पर बैठ करके जाती है देख लो, आप तो चित्र में देखते हैं हंस पर बैठी है जिनवाणी, और वो भी स्त्री है, उसको सरस्वती मानती, वो असली सरस्वती है क्या, सरस्वती का प्रतीक बनाया उन्होंने, यानी जिनवाणी यानी क्या, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सरस्वती यानी क्या, उसका एक रूप, एक संकेत, एक प्रतीक उन्होंने चित्र के माध्यम से दर्शा दिया, वो चित्र वंदनीय नहीं है, चित्र तो स्त्री का है, स्त्री पूजनीय है क्या, स्त्री के कितने गुणस्थान होते हैं, तो फिर ये सरस्वती पूजनी कैसे, हाँ, स्त्री आकार वाली, तो सरस्वती को अधिक से अधिक पांच ही गुणस्थान है, एक आरिका की पूजा और एक सरस्वती की पूजा समान कहलाएगी कि नहीं, तो ये सरस्वती ये लक्ष्मी पूजनी नहीं, मोक्ष लक्ष्मी, वही तो मोक्ष लक्ष्मी की उत्प्रतीक बना दिया उनने, स्त्री आकार को खड़ा कर दिया, है तो मोक्ष लक्ष्मी वो अलग ही है, वो तो किसी को दिखती नहीं, छिपके बेटी है, मोक्ष लक्ष्मी किसी को दिखती नहीं आंखों से, और दिखती नहीं है इसलिए कोई संकेत बनाना पड़ा, प्रतीक बनाना पड़ा, और इस प्रकार से बनाया, लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, वो जो स्त्री का आकार है वही लक्ष्मी, वो जो उसके हाथ में से पैसे गिर रहे हैं वो धन लक्ष्मी, आप स्त्री की पूजा क्यों कर रहे हो, वो पैसे गिरते हैं ना उसको पाना है हमको बहुत पागलपन है यही तो जमलिंग है हम कहां भटके हैं, यही भटके हैं हम, जो देखते हैं जो दिखाई देता है उसकी पूजा करते हैं, यही भटके हैं, और जो दिख रहा है उस प्रतीक के पीछे जो होता है वो पूजनी होता है, वो जो दिखता नहीं उसका इन्होंने प्रतीक बनाया, सरस्वती के रूप में प्रतीक बन गया, लक्ष्मी के रूप में प्रतीक बन गया, गंधर्व परमिष्ठ नहीं दिखते हैं उसका प्रतीक बनाया
बाजू में बिठा दिया तीनों की जोड़ी, ये रत्नत्रय हो गया इनका ये रत्नत्रय बन गया। देखो देखो तो अज्ञानी जीवों की परिणति कैसी है। हम आंखों से जो देखते हैं उसको पूजा करते चले जाते हैं और ये हमारी अज्ञानता। उस पर्दे के पीछे क्या है ये उठा के नहीं देखा। वो प्रतीक चित्र हैं, प्रतीक चित्र पूजनी नहीं होती। देखिए अरहंत भगवान का आपने फोटो ले लिया, फोटो पूछते हो क्या? बोलो अरहंत भगवान का फोटो क्यों नहीं पूछते आप, जबकि साक्षात उनकी प्रतिरूप है वो। फोटो पूजनी नहीं है, प्रतिष्ठित मूर्ति ही पूजनी है। आप प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करते और फोटो प्रतिष्ठित नहीं है। पंच कल्याण किसके नहीं हुए इसलिए पूजनी नहीं। कोई भी चीज प्रतिष्ठा करने के बाद पूजनी होती है, प्रतिष्ठा जिसकी नहीं होती वो पूजनी नहीं। अब प्रतिष्ठा भी क्या, प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि अरहंत के आकार प्रकार का एक मूर्ति बना लिया, अरहंत भगवान जिससे लग रहा है उसमें परिग्रह नहीं कुछ नहीं, वीतराग मुद्रा ध्यानस्थ मुद्रा प्रतीक बना दिया। अब प्रतीक किसका है, वो पत्थर का है। पत्थर में क्या है, आकार आ चुका है। किसका आकार आया, अरहंत भगवान का आकार आया। ये आकार पूजनी, आकार पूजनी जरूर है, लेकिन वह आकार एकेंद्री है, पृथ्वी का एक है, पाषाण है। जिस पाषाण में आप बैठते थे पांव के तले रोनते थे, वह अब आकार का रूप धारण कर लिया तो आपके लिए पूज्य हो गया, वो वंदनीय हो गया। पर वो भी वंदनीय कब, जब प्रतिष्ठा हो जाए तब वंदनीय। जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक एक दिन पहले तक एक शिल्पी उसके ऊपर ही बैठ करके, शिल्पी ऊपर भगवान के ऊपर ही बैठा है, काट रहा है, उनके पांवों में भगवान है। इसलिए कहते हैं अप्रतिष्ठित मूर्ति पर पैर भी रखो चल जाए, परंतु प्रतिष्ठा होने के बाद अगर नाभि के नीचे भी रखते हो तो पाप लगेगा, दोष लगेगा, प्रतिष्ठा उसकी ऊंची हो जाती है। प्रतिष्ठा का मतलब गुणारोपण क्रिया। भगवान के जो 46 मूल गुण हैं, उन 46 मूल गुणों का आरोप अगर उसमें हो गया तो वह पूजनीय हो गई। आप प्रतिमा को नीचे नहीं रखोगे, प्रतिमा का अनादर नहीं करोगे, ये नियम बन गए, नियम बन गए। फोटो की पूजा आप नहीं करते, जबकि वो फोटो साक्षात अरहंत जैसा लग रहा है तब भी पूजा नहीं करते, तो रखते क्यों है फोटो, पूजा करना ही नहीं है तो? स्मरण के लिए, स्मृति के लिए रखते हैं। इनको देख करके साक्षात भगवान का स्मरण करके हम वंदना करेंगे। छाया, छाया को देखकर मनुष्य जैसे याद आता है, वैसे ये छाया है, भगवान की छाया है। इनको देख करके साक्षात भगवान का स्मरण करो और अर्घ चढ़ाओ। जब भगवान का फोटो वंदनी नहीं है तो फिर साक्षात परिग्रहधारी सरस्वती साड़ी पहनी है, आभूषण पहनी है और हंस पर बैठी। और कितने किलो की होगी सरस्वती हंस कितने किलो का, और वह वाहन उस पर कैसे झेल दिया, वजन को कैसे संभाल लिया उसने। ये वंदनी नहीं। चित्रकार ने जो चित्र बनाया काल्पनिक चित्र, उसका नाम है सरस्वती। काल्पनिक चित्र का नाम है सरस्वती, काल्पनिक चित्र का नाम है लक्ष्मी, काल्पनिक चित्र का नाम है गणधर। ये तीनों काल्पनिक है, लेकिन इस कल्पना में त्रुटि इतनी रही कि उसको वस्त्र आभूषण परिग्रह से लथपथ कर दिया। ये वस्त्र पहना दिया, आभूषण पहना दिया, ये आवश्यक नहीं था। जिनवाणी यानी जिनवाणी शास्त्र को दर्शाना चाहिए था, इन्होंने सरस्वती का चित्र बनाया। प्रवचन सार, समय सार, षटखंड आगम, तत्वार सूत्र, सारे शास्त्र को फोटो ले लो, फोटो की पूजा कर सकते हो स्मृति के रूप में रख करके। साक्षात तो फोटो पूजनी नहीं, पर शास्त्र तो दिख रहे, उन्हीं शास्त्रों का फोटो तुमने ले लिया। जिन शास्त्रों में जिन भगवान की वाणी थी, सरस्वती विद्यमान थी, वो जिनेन्द्र भगवान के वचन, वो वचन में जो अर्थ, अर्थ में जो हित का, कल्याण का मार्ग था, वो उसमें था, इसलिए उसकी हम पूजा कर रहे। वंदना किसकी? जिनवाणी की। तो जिनवाणी क्या स्त्री रूप है? नहीं है। तो शब्द रूप है? नहीं है। कागज रूप है? नहीं है। आखिर प्रश्न उठेगा, कहां छिपी है फिर जिनवाणी? कितने पर्दे उठा लिए, वहां जिनवाणी नहीं, इसको उठा लिए, वहां जिनवाणी नहीं, शब्द का पर्दा भी उठा लो, जिनवाणी नहीं। तो जिनवाणी है कहां? हां, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ, तत्व, और तत्व का जो अर्थ, वो अर्थ जिनवाणी है, वो अर्थ हमारा हित करता है, वो जिनवाणी है। वो अर्थ किसके मुखारविंद से निकली? तो जिनेन्द्र भगवान के मुखारविंद से निकली। वो निकली हुई को वाणी कहा, वचन कहा, वाणी कहो वचन कहो एक ही बात है, वाणी कहो वचन कहो बात तो एक ही है। वाणी शब्द स्त्रीलिंग है, वचन शब्द पुल्लिंग है। वाणी निकलती है ऐसा कहते हैं, कि वाणी निकलता है ऐसा कहते हैं। तो क्यों कहा ऐसा? वाणी शब्द स्त्रीलिंग है, चित्रकार ने शब्द को पकड़ करके चित्र बनाया। वाणी शब्द स्त्रीलिंग है, वाणी कीर्ति है, तो उसको सरस्वती भी कहा, जिनवाणी भी कहा, जिनवाणी माता भी कहा। अरे सब स्त्रीलिंग के शब्द आ रहे हैं, ये तो बनाओ एक चित्र बनाओ। अरे सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं, और लोग बोल रहे हैं, माता कह रहे हैं, सरस्वती कह रहे हैं, बनाओ बनाओ एक चित्र बनाओ। तो स्त्री का आकार बना करके खड़ा कर दिया, और उसमें क्या कहा, द्वादशांग का सभी रूप उसमें लिख दिया। क्या लिख दिया? एक शास्त्र दे दिया हाथ में, वो देखो, सरस्वती यानी शास्त्र, और लक्ष्मी यानी पैसा गिरा दिया, पैसा गिर रहा है लक्ष्मी। कल्पनाएं स्त्री बना करके उसके आसपास, उसके हाव भाव, उसके अंगो पांग में उन्होंने जो कुछ भी वस्तु रखी है, वहां पर जिनवाणी के शास्त्र की परिकल्पना है। जप माला दे दिया, ये क्या है? उसमें कितनी मणि होती? एक से आठ। क्यों दे दिया? हाथ में जप माला है सरस्वती के हाथ में, देखा नहीं? देखा नहीं होता? जपमाला है एक हाथ, चार हाथ में क्या क्या है? नहीं देखा? जपमाला भी है, जपमाला भी, वीणा है, संगीत। वीणा को सुनते सुनते मन उबता नहीं, वीणा मधुर ध्वनि को व्यक्त करता, व्यक्त करती है, वाद्य है वो वीणा, वीणा बजाती हुई बेटी। तो वीणा किसका प्रतीक? दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, दिव्य ध्वनि का प्रतीक। भगवान की दिव्य ध्वनि से कोई उबता नहीं है। जैसे वीणा वाद्य से कोई व्यक्ति उब नहीं सकता, दिव्य ध्वनि से उब नहीं सकता, सतत दिव्य ध्वनि करती है। अब वीणा सतत ध्वनि देती है, त्यों त्यों, दिव्य ध्वनि गंभीर नाद देती है। वो दिव्य ध्वनि का द्योतक रूप में उन्होंने तार, अनेक प्रकार के तार कस करके उस स्त्री के हाथ में दे दिया। और हाथ कितना बनाया? चार। चार किसका प्रतीक मालूम? चार अनुयोग जिनवानी है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। चार अनुयोग। और क्या है? हाँ, सरस्वती को किस किधर बिठा दिया? नहीं, हंस क्या कमल नहीं? लक्ष्मी कमल पर है, सरस्वती नहीं, उसके भी कमल बनता है, साइड में कमल बनाते हैं सरस्वती के। नहीं देखा ऐसा चित्र? सरस्वती के लिए कमल भी बनता है। चलो, कमल भी प्रतीक है और हंस भी प्रतीक, दोनों मान ले। हंस किसका प्रतीक? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हंस जो है वह जब आप दूध और पानी मिला करके पात्र हंस के, हंस पक्षी के सामने रखेंगे तो वह हंस दूध दूध को पी लेगा, पानी पानी को वहीं छोड़ देगा। फिल्टर करता है वो। जिनेंद्र भगवान की वाणी हंस पक्षी की तरह वाणी है। वो दोष का उपदेश नहीं देते, वो गुण गुण का उपदेश देते हैं। अज्ञानता का मार्ग नहीं बताते, अनायतनों का मार्ग नहीं बताते, वो सब जल है, दूध है, जो गुण है, आयतन है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र दुनिया में है, लेकिन उसका उपदेश नहीं देते। जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का उपदेश देते हैं वो हंस नहीं हो सकते। वो कौन हो सकते हैं? वो कौवा हो सकता है, हंस नहीं। कौवा कैसा भी पानी पी लेता है, गंदा पानी भी पी लेगा और स्वच्छ पानी भी पी लेगा, उसका कोई भरोसा नहीं, क्या करेगा। लेकिन हंस वो गंदे पानी में भी मुंह डाल दिया है तो वह पानी पानी तो खींच लेगा और मिट्टी मिट्टी को थूक देगा। मिट्टी मिट्टी को थूकता है। दूध और पानी को ही अलग कर सकता है तो मिट्टी को नहीं अलग कर सकता। उससे बारीक बात है ना, वो दूध को पीना और पानी को छोड़ना, उसमें तो मिट्टी है, मिट्टी के कण को तो सहज रूप से अलग करके पानी पी लेता है। तो वो क्या है, किसका प्रतीक? क्षीर नीर विवेक का प्रतीक वो राजहंस पक्षी, हंस उसको वाहन बनाया, यानी हंस उसका प्रतीक है, सम्यक ज्ञान का प्रतीक है वो, यानी सम्यक ज्ञान को ले लेता है और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान को छोड़ देता है। विवेक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, हंस पक्षी के लिए विवेक का उदाहरण दिया जाता है। विवेक बात को बतलाने के लिए हंस पक्षी का उदाहरण लिया जाता है। ये हो गया हंस पक्षी का। और क्या विशेषता? चार हाथ हो गए, चार अनुयोग के प्रतीक, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। जिनवानी चार अनुयोग में बटी हुई है। चार अनुयोग के माध्यम से भगवान की वाणी को हम अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, कल्याण करते हैं। चार हाथ, बच्चा जब गिरता है माँ उठाती है, पांव से उठाती है कि हाथ से? महाराज पांव से कौन उठाता है, हाथ से उठाती है। चार अनुयोगों को किसका प्रतीक बनाया? हाथ का। तो जब हम गिरते हैं, हमारा पतन होता है, तो सरस्वती माता यानी जिनवानी हाथ से उठाती है। चार अनुयोग ही हमारी रक्षा कर सकती है, और चार अनुयोग हाथ के समान है, हाथ के प्रतीक है वो। अब देखो, हाथ हो गए चार, लेकिन सरस्वती के पांव कितने हैं? चार क्यों नहीं? महाराज चार तो नहीं होना चाहिए, चार तो उनके होते हैं। जिनको दो पांव हो तो मनुष्य कहलाता है, जिनके चार पांव हो जाए तो मनुष्य के कोटि में नहीं रह पाएगा, इसलिए चित्रकार ने चार नहीं बनाया, सरस्वती के पांव दो ही, हाथ चार। हाथ जितने बढ़ेंगे उतना अच्छा। हाथ अधिक किसके होते हैं? किसी देवता के, विक्रिया से बना लेता है, हजार सहस्र हाथ भी बना सकता। तो किसी के पास ये विक्रिया शक्ति हो, विद्या हो, ज्ञान हो, अच्छे जीव के पास ही ये शक्ति होती है हाथ बनाने की, तो उसको तो अच्छा मानते हम, वो अच्छा का प्रतीक। हाथ तो चार बनाया लेकिन पांव दो ही बनाए चित्रकार ने, फिर वो कहां खड़ी है? बैठी है कि खड़ी है? सरस्वती तो बैठी रहती है, सरस्वती बैठी रहती है, और लक्ष्मी, इसमें क्या कारण? हाँ, कौन चंचल है? लक्ष्मी। हाँ नहीं, जाने को ही खड़ी है, वो बैठती ही नहीं है, आई है तो जाना ही चाहती, बस आई ही नहीं जाना चाहती है, कितना भी ब्रेक लगाओ वो जाना ही चाहती है। पैसा आता है, तुम रोको, बहुत बांध के रखो तो बचता है, नहीं तो जाने को ही सोचता है वो। पैसा चंचल होता है, जेब में आया कि जाने लगता है, वो नहीं जाता, हमारा मन चंचल है। मन हाथ में, जेब में हाथ जाता ही है, कुछ दिखा ना गया, बाजार में कुछ दिखा ना गया, उसको खरीदूं क्या? चंचल करता है, इसलिए लक्ष्मी को चंचल बनाया। लक्ष्मी को चंचल है इसलिए खड़ा कर दिया, और सरस्वती क्योंकि आती है तो जाती नहीं, एक बार विद्या आई, ज्ञान आया, सम्यक ज्ञान आया, तो ये ज्ञान जाता है क्या? नहीं जाता, सतत अपने पास ये ज्ञान रहता है, जिनवानी का ज्ञान। तो इसलिए सरस्वती को किस मुद्रा में बनाया? हाँ, बैठे मुद्रा में बनाया, ये कारण है। और उनके जो आसन है वो भी अलग अलग, इसको हंस बनाया, उनको कमल बनाया। कमल क्यों बनाया? लक्ष्मी धन का प्रतीक है ना, सरस्वती विद्या का प्रतीक है, समझ रहे? लक्ष्मी धन का प्रतीक है और सरस्वती विद्या का प्रतीक है। धन जो है वो धन दूसरे के द्वारा ला करके उपस्थित किया गया है, कमल बनाया, समोसरण की रचना की, ये भगवान ने नहीं की, किसने किया? इंद्र ने किया। ये बाह्य वैभव है, जड़ वैभव है, ये
लक्ष्मी चेतन है, केवल ज्ञान लक्ष्मी, केवल ज्ञान सरस्वती, केवल ज्ञान की सरस्वती चेतन है, वो सदा भगवान की आत्मा में बैठी हुई है, केवल ज्ञान रूपी सरस्वती। केवल ज्ञान एक विद्या है, यद विद्या दर्पणाय थे, नम श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाय थे। विद्या यानी वहां केवल ज्ञान, विद्या यानी सरस्वती, विद्या यानी केवल ज्ञान, वह हमेशा रहती है। कहां रहती है? लक्ष्मी से भी उच्च स्थान है सरस्वती के लिए। और सरस्वती किसके पास रहती है? भगवान के पास, भगवान के अंदर। पर लक्ष्मी कहां रहती है? स्वर्ग में, इंद्र के पास, कुबेर के पास। लक्ष्मी भाई, लक्ष्मी भाई, लक्ष्मी भाई, धन कहो इसको, संपत्ति कहो, पैसा कहो, भौतिक पदार्थ कहो, समोषण का नाम एक ही है। हाँ, और वो किसने लाकर के यहां खड़ा कर दिया इसको? वो कमल किसका, ये शिव किसके, इंद्र के। समोषण को लक्ष्मी कहा है और भगवान के केवल ज्ञान को सरस्वती कहा है। उच्च स्थान पर कौन बैठे हैं? तो पूजनी कौन है? सरस्वती पूजनी है। केवल ज्ञान को सरस्वती कहा है, वाणी कहा है, जिनवानी कहा है, माता कहा है, बहुत सारे नाम हैं सरस्वती के। जो कुछ भी सरस्वती के नाम आते हैं वो सभी केवल ज्ञान के नाम हैं। इस फोटो के नाम नहीं, इस चित्र के नाम, चित्र में प्रतीक बनाया है। प्रतीक वंदनी नहीं होता, केवल ज्ञान वंदनी होता है। केवल ज्ञान को सरस्वती कहा है, उस सरस्वती केवल ज्ञानी की, केवल ज्ञान की पूजा आप करते हैं तो गुण की पूजा होती है, प्रतीक की पूजा करते हैं तो गुण की पूजा नहीं होती। ये प्रतीक, ये स्त्री का आकार, ये चार हाथ, सभी केवल ज्ञान की ओर इंगित कर रहे हैं। ये है मीनिंग उसका। मालूम था ये? हाँ, दीपावली में। हाँ देखो, दीपावली आ रही है, उस बात को भी मैं बता रहा हूँ। दीपावली में कौन सा फोटो रखो अभी चित्र करना, ये तीन का फोटो नहीं रखना। हमारा केवल ज्ञान स्त्री का रूप नहीं है, विद्या जरूर है उसका नाम, विद्या। किसी लेडीज का नाम भी विद्या रखते हैं, लेकिन वो भी विद्या वो नहीं है। केवल ज्ञान गुण है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान की पर्याय है, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हमारे पास ज्ञान तो है, सम्यक ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान अभी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पर्याय में विद्यमान है, और यही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान की पर्याय में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको सरस्वती नाम दिया जाएगा। तब तक इनाम नहीं दिया जाएगा जब तक नाम नहीं दिया जाएगा। नाम के बाद ये नाम, फिर बाद में प्रणाम। नाम के बाद ये नाम, बाद में प्रणाम। करो काम, सम्यक ज्ञान को धारण करो। करो काम, पहुंचो धाम अरहंत अवस्था तक। करो काम, पहुंचो धाम, सम्यक ज्ञान का नाम यहीं से पाना, फिर उस सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान के रूप में ढालना। वो केवल ज्ञान माता सरस्वती कहलाती है, उस सरस्वती की करना वंदना। कविता हो गई। कविता बैठे बैठे हो जाती है, सरस्वती बैठी है तो कविता भी बैठी है। लक्ष्मी भौतिकता का रूप है,
सरस्वती परमार्थ का रूप है, सरस्वती मोक्ष देती है और लक्ष्मी मोक्ष मार्ग में चलने के लिए व्यक्ति को हेल्प करती है। ये कमल, ये सब जड़ वस्तु है ना, वैभव तो है, ये वैभव। पैसा क्या है, ये भी वैभव। पैसा मोक्ष मार्ग में चलने वाले को केवल सहायक होता है, पैसा। सहायक होता है, पर मोक्ष मार्ग में जो चल रहा है वो व्यक्ति आत्मा है। आत्मा के भीतर जो सम्यक ज्ञान है वो है जिनवानी, वो है सरस्वती, वो गुण है, वो वंदनी है, लक्ष्मी वंदनी नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति में अनादिकालीन ये परंपरा है, कभी भी इन्होंने भौतिक लक्ष्मी की पूजा नहीं की। समोशरण में लोग गए लेकिन समोशरण की वंदना नहीं की, समोशरण को देखा केवल। समोशरण केवल देखने लायक ही होता है, देखने के लिए जाना ठीक है, उचित है। पैसा केवल देखने लायक ही होता है, क्या खाने लायक होता है, क्या पूजने लायक होता है? पूजने लायक भी नहीं, खाने लायक भी नहीं, दोनों के लायक नहीं है वो। तो किसके लायक? देखने लायक। पैसा देखने लायक, पैसा खाने लायक नहीं, पैसा पूजने लायक नहीं, क्योंकि पैसा आत्मा का गुण नहीं है, लक्ष्मी आत्मा का गुण नहीं। लक्ष्मी वैभव है, भाई लक्ष्मी, भाई लक्ष्मी वैभव है। वैभव पूजनी नहीं होता, वैभव क्योंकि वह जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु की पूजा नहीं होती, भारतीय संस्कृति में चेतन वस्तु की पूजा होती है, केवल ज्ञान की पूजा होती है और केवल ज्ञानी की पूजा होती है, ज्ञानवान की और ज्ञान की पूजा होती है, चारित्रवान की चारित्र की पूजा होती है, सम्यक दर्शन की और सम्यक दर्शनवान की पूजा होती है। गुण वंदनी है, वंदे तद्गुण लब्धे, मंगलाचरण में ही कह दिया भगवान ने। तुम्हारे लिए कौन पूज्य और कौन अपूज, तो कहा वंदे तद्गुण लब्धे, गुण ही वंदनी है और तीन को छोड़ करके कुछ भी नहीं वंदनी दुनिया में। तीन को ही ध्यान रखो, जब भी पूजा का समय आया और वंदन का समय आया, तीन ख्याल में आना चाहिए। जमलिंग नहीं कि फोटो सरस्वती के पूजनी है क्या, नहीं, जमलिंग काय को कर रहे, फोटो नहीं, फोटो के पीछे जो सरस्वती बेटी है, जिनेंद्र भगवान की केवल ज्ञान की वाणी बेटी है, उसकी वंदना करो, ये गुण की वंदना है। तो देखो नीचे लक्ष्मी है, ऊपर सरस्वती है। सरस्वती किसके पास बैठी है, कहां बैठी है? भगवान के आत्मा के अंदर बैठी है। कितनी पवित्र है लक्ष्मी, को जगह नहीं मिली अंदर, प्रवेश नहीं मिला। कमल से चार अंगुल ऊंचे बैठते हैं भगवान, कमल का स्पर्श भी नहीं करते। भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी का स्पर्श भी नहीं करूंगा, करूंगा तो अपवित्र हो जाऊंगा। लक्ष्मी का स्पर्श जो करता है वो अपवित्र होता है, और जो सरस्वती का स्पर्श करता है वो पावन हो जाता है। इतना डिफरेंस है। लक्ष्मी हमें गिरा देती है, सरस्वती हमें उठाती है। सरस्वती वंदनी है, लक्ष्मी वंदनी नहीं है।
कहीं भी जैन शास्त्रों में ये नहीं कहा कि भगवान की वंदना करो और समोशरण की वंदना करो और आ जाओ। समोशरण की वंदना करने को कहा, ये बाह्य लक्ष्मी जो केवली भगवान के पुण्य के उदय के कारण से उनके पुण्य के प्रभाव से इसकी रचना हुई है, उनके पुण्य का ही प्रभाव है, जो इंद्र तक पहुंच गया वो प्रभाव, उनका सिंहासन कंपायमान हो गया, केवल ज्ञान हो चुका है, घंटी बज गई स्वर्ग में और सारी संपत्ति को ला करके यहां समर्पित कर दिया, चरणों में भगवान के चरणों में इंद्र ने अर्पित कर दिया, हे भगवान ये आपका ही है, हमारा कुछ नहीं। इंद्र भी सम्यक ज्ञानी, इतना वैभव होने के बाद भी मैं कुछ हूं ये समझता नहीं है, सम्यक दृष्टि के पास 8 मद होते ही नहीं। इंद्र के पास 8 मद आएंगे क्या? एक चक्रवर्ती भी ऐसा समोशरण की रचना नहीं कर सकता, भूपर भूमि पर रहने वाला चक्रवर्ती करना चाहे तो नहीं कर सकता, इंद्र ही कर सकता है। क्यों? ऐसा समोशरण बनाओ 5 मिनट में तैयार हो जाए और 5 मिनट में गायब हो जाए, चक्रवर्ती बना पाएगा क्या? नहीं। और ये समोशन ऐसा होता है, इंद्र ऐसा कर दिया तो गायब, ऐसा कर दिया बन गया। ये विक्रिया से बनता है और ये विक्रिया शक्ति चक्रवर्ती के पास नहीं होता, विक्रिया शक्ति इनके पास नहीं है, वो इंद्र के पास ही है। और कुबेर को आज्ञा देता है, स्वयं भी नहीं आता वो, पहला समोषण की रचना करो, मैं पूजा के लिए आ रहा हूं, तुम जाओ। कुबेर जाता है पहले, सबसे पहले समोषण की रचना करने के लिए पवित्र स्थान पर, किसी पर्वत पर, आकाश में होता है, किसी पर्वत पर ये समोषण की रचना होना है तो पर्वत पर तो होता ही है लेकिन जमीन से स्पर्श नहीं रहता, ये अधर में, और सीढ़ियां होती हैं, आपको जमीन तक सीढ़ियां मिलेंगी, आपको चढ़ना पड़ेगा, नीचे सब आधार में सब खाली है, आकाश में बनता है। और ऐसा सिद्ध शिला जैसे, उल्टी सिद्ध शिला, आपका तवा होता है ना, तवा तवे के आकार से होता है ऐसा, तो अपन ऐसे चढ़ते 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 पहुंच जाते समोशन में, और फिर उसके ऊपर 3 वेदियां होती है, जैसे ध्वज खंभ के नीचे 3 स्टेप होते हैं, और उसके ऊपर सिंहासन होता है, सिंहासन के बीच में कमल होता है, कमल से 4 अंगुल छोड़कर फिर वो सरस्वती को धारण करने वाले, केवल ज्ञान को धारण करने वाले अरहंत भगवान वीतराग मुद्रा में विराजमान रहते हैं। जैन परंपरा में इस मुद्रा की पूजा है, जो सर्वथा समस्त परिग्रहों से मुक्त और अपने आप में लीन, इस मुद्रा की, वीतराग मुद्रा की वंदना होती है। हर मंदिर में इसी मुद्रा की प्रतिमाएं मिलेंगी, ये प्रतिमा नहीं मिलती, ये वंदनीय नहीं है, ये भी राग का प्रतीक है, राग का प्रतीक। ऐसा कौन करते हैं जिसको दुनिया पर करुणा है वो ऐसा करते हैं, राग का प्रतीक है ये वंदनी, रागी वंदनी नहीं, वीतरागी वंदनी है, हम गुणों के उपासक हैं। ये तो अति हो गया, ये अति हो गया ऐसा करना, करना जरूरी नहीं। भक्त नमस्कार कर रहा है तो नमस्कार करने के बाद उसका फल उसको मिल गया, ऐसा करने से ही फल मिलता ऐसा नहीं, ऐसा किए बिना भी उसको फल मिल जाता है। ऐसा बैठ जाओ, दुनिया की फिक्र में मत रहो, वही आदर्शता है। लेकिन अज्ञानी दुनिया क्या सोचती है, जब तक भगवान ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा कल्याण ही नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू यहाँ तक आ गया, तू तेरा भाग्य से आया है, तेरा कल्याण तो हो चुका है, नहीं हुआ क्यों समझता है? तू यहाँ तक आ गया, दर्शन कर गया, बस तुझे फल मिल गया, जा। उस पुण्य का उदय जब आएगा तुम्हारे ऊपर ही वो बरसेगा, फिर उसके छत्र छाव में बैठ करके, उस पुण्य के फल के छत्र छाव में बैठ करके ये अनुभूति कर कि ऐसी अच्छी वर्षा क्यों, सावन की वर्षा, झुनझुन वर्षा क्यों हो रही है। तो मैं दर्शन किया था, तो दर्शन करते समय क्या ऐसा किया था परमात्मा ने? परमात्मा कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देते, परमात्मा अवस्था से पहुंचने से पहले भी आशीर्वाद नहीं देते और परमात्मा बनने के बाद भी आशीर्वाद किसी को नहीं देते। मुनि अवस्था में कोई तीर्थंकर किसी श्रावक के यहाँ, श्रावक ने वो नमस्कार करने पर उनको ऐसा आशीर्वाद दी, तीर्थंकर आशीर्वाद मुनि अवस्था में भी नहीं देते। ये उनकी विशेषता देखो महाराज, ऐसा क्यों? मुनि है, देना तो चाहिए, दे तो क्या नुकसान उनका? नुकसान तो नहीं है, लेकिन नुकसान ये है, ये भी राग है। दया आई, तुम्हारा कल्याण हो, ये दया भाव, ये राग कषाय है, वो कषाय पूर्वक ही राग करना संभव। तीर्थंकर इसको पसंद नहीं करते। कौन करेगा दुनिया का कल्याण? मैं अपना कल्याण करूं, मैं पहला अपना कल्याण करूं, दुनिया के चक्कर में मैं नहीं हूं, दुनिया मेरे चक्कर में रहे मुझे कोई मतलब नहीं, दुनिया मेरे चक्कर में रहे उसकी नीति है कि मेरे चक्कर में दुनिया आएगी, आती है, वो अपने लाभ के लिए आती है। दुनिया मेरे चक्कर में रहे, लेकिन दुनिया के चक्कर में मैं कभी नहीं रहूंगा। और यही उत्कृष्ट साधना है, यही उत्कृष्ट साधना है, और यही उत्कृष्ट चारित्र है, और ये चारित्र ही पूजनीय है जैन परंपरा में। ये आदर्श परंपरा, सर्वोच्च परंपरा है। किसी भी मंदिर में आप देखिए, ऐसी प्रतिमाएं क्यों नहीं मिलती? ऐसी ही क्यों? ये कांच बना के रखो, तीर्थंकर की प्रतिमा बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ। तो ऐसा बनोगे तो भगवान को रागी सिद्ध कर दिया तुमने, वीत रागी नहीं है वो। जब राग भाव आया होगा तभी ऐसा किया ना, तो फिर ये मुद्रा तो राग की मुद्रा है, वीत राग की मुद्रा नहीं। भगवान के मन में राग आया तभी ऐसा हुआ है हाथ। उस प्रतिमा को यदि बिठा करके आप पूजा करते हैं तो राग की पूजा करते हैं, वीत राग की पूजा आप नहीं करते। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा, प्रतिमा भी बनाओ तो जैसा मैं था वैसा ही बनाना, विरुद्ध नहीं बनाना। मैं था कुछ और तुम बना रहे कुछ, ऐसा नहीं करना। जैसी मेरी चर्या थी वैसी ही प्रतिमा बनाओ। और लोगों की परंपरा ऐसी रही, चतुर्थ काल से लेकर अभी तक ऐसी प्रतिमा बनने की परंपरा रही। ये बिल्कुल ठीक है, विहार करते हुए तीर्थंकरों की प्रतिमा कभी भी मंदिरों में नहीं बनाई जाती, न दिखते कहीं बनाई हुई। क्यों? चलना भी राग है, विहार करना प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति पूजनी पूजी पूजी नहीं जाती, प्रवृत्ति निर्वृत्ति पूजी जाती है। पार्श्वनाथ भगवान को अरहंत की ही प्रतिमा बनाते हैं, पहली बात तो ये है, उनमें कोई भी राग नहीं है, वो तो वीतराग ही हैं। अब आ करके सांप खड़ा है तो पार्श्वनाथ क्या करेंगे? सांप से पार्श्वनाथ को कोई मतलब नहीं, वो तो वीतरागी हैं।
और हमने जो प्रतिष्ठा की है सांप की प्रतिष्ठा नहीं की है, भगवान में 46 मूल गुण डाला है। अब जो सांप बनाया जाता है वो केवल भगवान को मुनि अवस्था में इस तरह का उपसर्ग भी आया था, इसको प्रतीक के रूप में बनाया जाता है। सांप को न कि वंदना की दृष्टि से बनाया जाता है और न ही केवल न ही कोई वो पार्श्वनाथ का अभिन्न अंग है कि उसके बनाने पर ही पार्श्वनाथ माने जाते हैं और उसे नहीं बनाएंगे तो वो पार्श्वनाथ माने ही नहीं जाते, ऐसा भी नहीं। उसको बनाओ चलेगा, नहीं बनाओ चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी पार्श्वनाथ है और बनाओगे तो भी पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ की मुद्रा कैसी होनी चाहिए समझा रहे हैं, पार्श्वनाथ की मुद्रा कैसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, चलते हुए नहीं होनी चाहिए, आंख खुली हुई नहीं होनी चाहिए। देखो ये राग का प्रतीक है, जब हम ऐसे रहते हैं किसी न किसी चीज को देखते रहते हैं, देखने में राग रहता है, राग आए बिना आंखें नहीं खुलती, दुनिया को हम नहीं देख सकते। दुनिया को देखने की चाह ये राग है, तो आंखें जो खुली हुई प्रतिमा आप बनाएंगे तो ये राग का द्योतक है कि वीतरागता का, राग का है, राग पूजनी नहीं है। इसलिए जैन प्रतिमाएं नाशिका दृष्टि से ध्यानस्थ प्रतिमाएं मिलती हैं, ध्यान के काल में दुनिया से व्यक्ति अलग हो जाता है और अंतरंग लोक में पहुंच जाता है, अंतरंग लोक की यात्रा करता है, वो यात्रा करने वाला वीतरागी, दुनिया को भूल गया, किसी से राग नहीं, वीतराग, इतना वीतराग बन गया कि दुनिया को भूलकर अपने में डूब गया। जो अपने में डूबता है वो गुणवान है और जो अपने को छोड़कर बाहर आता है वो रागी है। अपने को छोड़कर बाहर आता है वो रागी और बाहर को भूलकर अपने में जो डूबता है वो वीतरागी। वीतरागी प्रतिमा की ही पूजा होती है जैन परंपरा में। टाइम हो गया, ये भी राग हुआ, ज्यादा बोल दे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे।